ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம் ஸ்கந்த் தேர்வா அத்தியாய் ஸ்லோக் சங்கியா 51, 52, 53, 54 and 55. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுவே மங்கள் ஆச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப ப்ராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி ப்ராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஃ கதாமஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாக்வத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர பவதி நஷ்டிகே. பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஆராத்யோ பகவான் வ்ரஜேஷ தனய தத்தாம விருந்தாவனம் ரம்யா காசிதுபாசனா வ்ரஜவது வர்கேனயா கல்பிதா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ப்ரமாணமமலம் ப்ரேம புமர்த்தோ மஹா ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாப்ரபுர் மதமிதம் தத்ராக்ரஹோ ந பரஹ. வன்ஷீ விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பரதருணபிம்பஃபலதரோஷ்டா. புர்ணேந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்த நேத்ரா கிருஷ்ணாகரம் கிமபி தத்வ அஹம் ந ஜானி. யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்துவந்தி வேதே சாங்கபத் க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம் சாமகா த்யானாவஸ்தித தத் கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஸ்யந்தம் நவிதோ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 51। तो जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी अपना घर त्याग कर चले गए और नारद मुनि अकस्मात आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा, नारद मुनि आप बताइए कि मेरे तात श्री और उनकी भारिया गांधारी वो कहाँ गए हैं, विदुर काका जी कहाँ गए हैं। तो उसके उत्तर में नारद मुनि ने उन्हें यह सिद्धांत बताया कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शोक करने के योग्य है। कुछ भी शोक किसी के लिए मत करो। अगर वाकई किसी की चिंता करनी है, किसी के विषय में सोचना है, तो जो भगवान है संसार में आए हैं और उन्होंने अपना सारा काम तकरीबन कर लिया है, अब वो अपना बाकी का काम कंप्लीट करके जाने वाले हैं, उसके विषय में सोचो। तो इतना बताने के बाद अब, क्योंकि अब मोह दूर हो गया, अब उनका ज्यादा जो दुख था गांधारी और धृतराष्ट्र की तरफ जो आकर्षण था वो समाप्त होके कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया। उसके बाद अब बता रहे हैं, वे कहते हैं, धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गत। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गत। वे कहते हैं धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा, एक तो धृतराष्ट्र और उनके भाई कौन, विदुर जी, गांधार्या च स्वभार्यया और उनकी पत्नी कौन, गांधारी, दक्षिणे हिमवत, दक्षिणे मतलब दक्षिण की ओर, हिमवत मतलब हिमालय के दक्षिण में गए। अब हिमालय के दक्षिण में क्या है, हरिद्वार। तो बोल रहे हैं कि वो हरिद्वार में गए हैं, वहां पर क्या है, ऋषिणाम आश्रमम गता, वहां पर ऋषियों के आश्रम है, वहां पर गए हैं। अनुवाद देखिए, हे राजन आपके बड़े चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, शोक आतुर महाराज युधिष्ठिर को ढारस बनाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। अभी पहले तो उनको ढारस बंधाई कि ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य जहां पर भी रहता है उसको भगवान की संरक्षण, भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है, उसको खाना पीना सब वहां पर मिल जाता है, और आप चिंता क्यों करते हो, हर किसी का भगवान पालन करता है तो उनका भी करेगा, आप उसकी फिक्र मत करो। इतना बताने के बाद अब वो बता रहे, मतलब नारद मुनि क्योंकि त्रिकालदर्शी है, अब पूरा बताएंगे कि वहां पर क्या क्या कर रहे हैं और अभी तो ये कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इस प्रकार है, किस प्रकार, श्लोक नंबर 52 देखिए, स्रोतो भी सप्त भिर्यावै स्वर्धुनी सप्त धाव्यधार सप्तानां तयेनाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। स्रोतो भी सप्त भिर्यावै स्वर्धुनी सप्त धाव्यधार सप्तानां प्रीतयेनाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। वो बता रहे हैं कि वो हिमालय के दक्षिण में गए हैं, वहां पर क्या क्या है, कौन सी जगह है जहाँ पर स्रोतो भी सप्तब्रिया, स्रोतो भी मतलब धाराएं हैं, सप्त यानी सात धाराएं हैं, स्वरधुनी, स्वरधुनी कहते हैं पवित्र गंगा जी की सप्तधा व्यदा, सात शाखाएं, मतलब गंगा जी की सात धाराएं हैं और सात छोटी छोटी शाखाओं की सूरत में गंगा जी बहती हैं। और क्यों इस तरह, क्यों गंगा के सात धा क्यों हैं, सप्ता नाम प्रीतये नाना, सप्ता नाम मतलब जो सात ऋषि हैं उनको प्रीतये, उनको संतुष्ट करने के लिए सप्त स्रोत प्रचक्षते। सप्त स्रोत मतलब सात स्रोत के नाम से वो जाना जाता है, उस एरिया को सप्त स्रोत कहा जाता है। अनुवाद देखिए, यह स्थान सप्त स्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल सात शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की संतुष्टि के लिए किया गया, क्योंकि सात ऋषियों की कुटियाएं थी ना, तो गंगा जी की धारा निकलती थी उनकी कुटिया तक, इस तरह से सात धाराएं बनी हुई थी और उस जगह को कहा जाता है सप्त स्रोत। तो वहां पर गए हैं, मतलब अभी नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि वो वहां पर गए हैं और वहां पर करते क्या हैं, तो बता रहे हैं श्लोक नंबर 53 देखिए। स्नात्वानो सवनम तस्मिन् उत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष्य उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः। स्नात्वानो सवनम तस्मिन् उत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष्य उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषण। स्नात्वा मतलब स्नान करते हैं, अनुसवनम मतलब नियम रूप से डेली स्नान करते हैं तीन बार, प्रातः यानी बहुत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को तथा संध्या, तीन बार स्नान करते हैं। उसके बाद तस्मिन मतलब गंगा में स्नान करते हैं तीन बार, क्योंकि गंगा के किनारे पर है तो गंगा में तीन बार स्नान करते हैं। हुत्वा मतलब अग्नि से यज्ञ करते हैं, सभी हुत्वाग्नि यथा विधि, विधि के अनुसार, शास्त्र के नियमों के अनुसार तीन बार स्नान करके फिर यज्ञ करते हैं अग्नि में। और उसके बाद अपभक्ष मतलब सिर्फ पानी ही पीते हैं, सिर्फ जल पीकर ही उपवास करते हैं। अब उनको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये मत फिक्र करो कि उनको खाना कौन देगा, क्योंकि वो पीते ही खाली पानी है। और इससे क्या होता है, अप शांतात्मा, इस तरह से हृदय कंट्रोल होता है, मन के अंदर जो विचार आते हैं वो कंट्रोल होते हैं, शरीर की गतिविधियां कंट्रोल होती हैं। आस्ते विगतैषण, और विगतैषण मतलब जो हमारा घर परिवार के अंदर बहुत ज्यादा स्नेह है, वो पारिवारिक स्नेह संबंधी जो विचार है उनसे जीव मुक्त हो जाता है अगर इस तरह का अनुसरण करता है। तो अनुवाद देखिए, इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य तीन बार प्रातः दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्नि यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि योग पद्धति, जो योग पद्धति होती है, इंद्रियों तथा मन को वश करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। क्या है कि इंद्रियों और मन को वश में करते हैं और आत्मा की ओर मोड़ने के लिए एक मैकेनिकल मतलब ये प्रोसेस है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार। ये सीरीज में ये सारा, पहले क्या होगा आसन, उसके बाद ध्यान, उसके बाद प्राणायाम, समाधि, ये सब होगा। तो इस तरह यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। और इसके लिए क्या है, कुछ विधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें क्या होता है, दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना, आसन मार कर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना, धीरे धीरे विषय से मुक्त होना। सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और कम से कम जितना संभव है कम से कम खाते हैं, फिर एक जगह पर आसन मारकर बैठ जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों में मन को एकाग्र करते हैं और भौतिक जो विषय हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लीन होना, जो मोह मात्र है। वो क्या है, घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार, ये आत्मा के कतिपय आवरण है। ये इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, शरीर से रिलेटेड वस्तु हैं, तो उनसे क्या है, अपने आप को विरक्त करना होता है। और योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मोड़ने में सहायक होती है। इस तरह जब हम योगा करते हैं तो योगा का मतलब खाली अपने शरीर को स्वस्थ बना। आजकल है ना, लोगों को यही खबर है, अच्छा आप योगा करते हो, योगा का मतलब है कि आपका शरीर अब निरोग रहेगा। निरोग के लिए नहीं है, भौतिक आसक्ति। यहाँ पर बताया कि इससे क्या, अपशांत आत्मा, आपका जो उपशांत आत्मा मतलब आपका शरीर मन कंट्रोल होता है आस्ते विगत ऐसा, और जो भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से, अपने संतान से मोह समाप्त हो जाए। तो ये योग पद्धति से यही करना होता है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें एकदम भूल जाते हैं। आधुनिक तथा कथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ जादू भरे करतब दिखाती हैं और अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल तो योग का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है। वो सिर्फ क्या करते हैं, कुछ जादू भरे करतब दिखाते हैं और बेचारी मासूम जनता उनकी ओर आकर्षित होती है, अथवा वे स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं। योग बस इसलिए किया जाए कि आपका शरीर निरोग रहे, लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम बुला सकें। योग पद्धति हमारे इस भौतिक बंधन के से मुक्ति कराने के लिए कि भौतिक वस्तुओं में और व्यक्तियों में हमारा जो इतना आकर्षण है वो कन्वर्ट हो जाए भगवान के अंदर, तो इसके लिए योग किया जाता है, ना कि अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा बताया है कि योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ भी सीखा है उसे हम भुला सकें। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीन कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे। अरे हमेशा यही सोचते थे कि पांडवों का राज्य छीन कर मैं अपने बच्चों के ना लाइफस्टाइल को बेटर कर सकूं। तो नितांत भौतिकतावादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए ये ही सामान्य व्यापार है। वह यह नहीं देख सकता कि ये किस तरह उस मार्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं। उसे ये नहीं समझ में आता कि चलो इस भौतिक जगत में तो थोड़ा हो सकता है मैं आनंद प्राप्त कर लूं, सुख सुविधाएं, लेकिन आगे तो मेरे लिए नरक के दरवाजे खुल रहे हैं, ये सारे कुकर्म तो मुझे नरक में लेकर जाएंगे। किंतु अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और वे अपने निपट मोहयुक्त व्यापारों को देख पाए और ऐसे ज्ञान के कारण ही आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। ये तो विदुर जी की असीम कृपा है। वास्तव में भक्तों, ये शुद्ध वैष्णवों की असीम कृपा है। वरना आज समस्त लोग धृतराष्ट्र की तरह अपने बच्चों और अपने जीवन को सुखी करने के लिए सबको दुखी करने में ही लगे रहते कि किसी तरह से हम खुद को सुखी करें और दूसरे भले दुखी हो हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो हमें भगवान की कथा श्रवण कराते हैं, भगवान के पवित्र नाम और भगवान की ओर हमारा आकर्षण स्थापित करते हैं और भौतिक वस्तुओं से हमारा आकर्षण खत्म कराते हैं। उसी तरह धृतराष्ट्र के ऊपर विदुर जी की कृपा थी, श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गीय गंगा के प्रवाह से पवित्र था उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास यानी व्रत करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। वो बोलता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, बस ऐसा योग करूं, कुछ जादू सीख जाऊं, कुछ कर्तव्य सीख जाऊं, थोड़ा मेरा शरीर ना आकर्षित बन जाए। तो इसके लिए नहीं, उसके साथ साथ हमें व्रत करना होता है ताकि योग अभ्यास को कंप्लीट करके हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकें। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जुबान पर लगाम नहीं है वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द हैं। भोगी अर्थात जो खाता पीता आनंद करता है योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मन माना खाने तथा पीने की छूट नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में लीन होकर अपना योग प्रारंभ किया था। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बताया कि आज के मूर्ख लोग होते हैं वो भोग करना चाहते हैं साथ साथ में स्वयं को योगी कहते हैं। योगी और भोगी तो विरोधी शब्द हैं। यदि आपके हृदय में भोग की एक जरा सी भी इच्छा बाकी रह गई है तो आप योगी नहीं हो सकते। योगी बनने के लिए संसार के समस्त भोगों का परित्याग करना होगा, जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने खाना पीना तक भी त्याग कर दिया, केवल जल पीकर ही वो जीवित रह रहे थे और पूरा का पूरा मन जो है वो भौतिक आकर्षणों से वो विगत आयशन यानी कि जितना भी आकर्षण भौतिक वस्तुओं में है वो हटाकर भगवान के चरणों में लगाना, तभी हमारा योग संपन्न हो सकता है। आगे कहते हैं धृतराष्ट्र ने हर अपने आसन पर विजय पाई, अपने श्वास पर विजय पाई और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो इसके विषय में बताते हुए कहते हैं जितासनो जित श्वासा प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरिभावना यादस्त रजसत्व तमोमल जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरिभावना यादस्त रजसत्व तमोमल जितासनो, उसने आसनों पर विजय प्राप्त कर ली है। जित श्वासा, जिसने अपने श्वास प्रक्रम को वश में कर लिया है। प्रत्याहृत यानी अब वो क्या करें, प्रत्याहृत मोड़ रहे हैं किसको, षडिंद्रिय अपनी छह इंद्रियों पर उसने कंट्रोल कर दिया है, वो मोड़ रहे हैं कहाँ पर, हरि भावनाया। अब वो अपनी इंद्रियों के द्वारा मतलब नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भौतिक भोग नहीं कर रहे, हरि भावनाया मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भगवान में अपनी इंद्रियों को लीन कर दिया है, छह इंद्रियों के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे हैं और ध्वंस्त मतलब विजय कर दिया है किस पर, रजसत्व तमोमल रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण इन सारे क्लमशों से वो पवित्र हो गया है। उसने अपनी आत्मा और अपने षडिंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया है, अपने सांस पर विजय प्राप्त कर ली है, आसन पर विजय प्राप्त, और हरि भावनाया और कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर लिया है। अनुवाद देखिए, जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति मोर कर प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के कलमस से के प्रति निश्चेष्ट बन जाता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं योग विधि के प्रारंभिक कार्य हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आदि। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को प्रकृति के तीनों गुणों के कलमस से मुक्ति दिलाने में सहायक होती। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात बताई कि उसने क्या किया, जितासनो जितश्वास प्रत्याहार षडेन्द्रिय, पहले अपने आसन पर विजय प्राप्त की, फिर अपने श्वास पर विजय प्राप्त की, फिर षडेन्द्रिय पर, और उसके बाद क्या हुआ, हरि भावना यानी जब उसका पूरा मन कृष्ण में लग गया, सारे कलमश खत्म हो गए तो फिर वो कृष्ण में मन लग गया, उससे क्या हो गया, द्वंस्त रजस सत्व तमो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण भी समाप्त हो गए। इसका मतलब है यदि हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है फिर ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य करने का लक्ष्य तो यही होता है ना कि हम भगवत भावना प्राप्त करें, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। तो कृष्ण भावनामृत यदि डायरेक्ट से प्राप्त कर दी जाए तो ये सब खुद ब खुद हो जाता है। तो आगे कहते श्री प्रभुपाद जी, जब सत्वगुण भी जो कि सर्वोच्च गुण है भाव बंधन का कारण है तो अन्य गुणों यानी रजोगुण तथा तमोगुण के विषय में क्या कहा जाए। रजो तथा तमोगुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और सत्वगुण के पद को प्राप्त कर लिया है जो ज्ञान तथा नैतिकता से पूर्ण है वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र जीभ नाक कान तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े बड़े योगी जन होते हैं जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को जीत लाते हैं लेकिन षडिंद्रिय को ये जो इंद्रियों के वेग है ना उसको रोक पाना उसको वश में करना बहुत कठिन है। किंतु जिसने उपर्युक्त विधि से भगवान हरि के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है वह प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है। कब कर सकता है, जब भगवान हरि के श्री चरणों में आप अपना समर्पण कर देते हो, कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, फिर षडेन्द्रिय का वेग हमें विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है वह प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतएव भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता, इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है। यानी कि प्रत्याहार किसको बोलते हैं, इंद्रियों को, यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जो कि भौतिक वस्तुओं को आंखें देखती रहती हैं, कान सुनते रहते हैं, जीवा खाती रहती है और त्वचा उसको स्पर्श करती रहती है, उन सारी इंद्रियों को भगवान सेवा में लगा दें और भगवान को देखें, भगवान के विषय में श्रवण करें, भगवान के विषय में बोलें, भगवान को प्रसाद अर्पण किया हुआ ही हम सेवन करें, भगवान पर चढ़ाए हुए पुष्प और तुलसी दलों का की सुगंध लें और केवल भगवान को, भगवान के श्री चरणों को या भक्तों के चरणों को स्पर्श करें, तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। यह सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है और जिसका अंत समाधि है, अर्थात सभी तरह के से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने में लीन रहने में होता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि योगिक विधि की समाप्ति यानी जो वास्तव में उसका एंड क्या है, परफेक्शन क्या है, सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने में लीन रहना। अगर आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हो तो समझो आप समस्त योगियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते न तरात्मना, कि योगियों में सबसे ज्यादा सर्वेश सारे योगियों में सबसे ज्यादा परफेक्ट वो योगी है जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया है और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। आगे नारद मुनि कहते हैं, विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानम आधारे घटाम्बर मिवाम्बरे। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानम आधारे घटाम्बर मिवाम्बरे। विज्ञानात्मनि संयोग्य मतलब शुद्ध विज्ञान जब उसको प्राप्त हो गया, अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त हो गई, तो आत्मनि यानी बुद्धि में संयोज्य ठीक से स्थिर करके क्षेत्रज्ञ शरीर यानी कि जब उसको वास्तविक बुद्धि प्राप्त हो गई तो वो देह से मुक्त हो गया, अपनी बुद्धि से भी मुक्त हो गया और क्या आत्मा को समझ गया। फिर आत्मा को समझ लेने के बाद प्रविलाप्यते यानी कि वो गुणों में भगवान से एकात्मा का बोध होने लगा उसको कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा भगवान से अभिन्न है, भगवान की अंश है। तो जैसे भगवान के गुण हैं प्रविलाप्य का मतलब होता है एकात्म होना यानी कि गुणों में भगवान के साथ एकात्म हो गया। और ब्रह्मणी आत्मन माधारे और जब इस तरह से आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध जीव जो है वो ब्रह्म को परब्रह्म के साथ तदाकार होता है यानी कि अपने गुणों में एकदम उसके जैसे गुण उसको प्राप्त होते हैं। जिस घटाम्बर मेवाम्बरे यानी घटा से युक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा, इस भौतिक आकाश ये जो भौतिक आकाश है उनको पार करके उसको आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचना होगा। वास्तव में पता है क्या कि अभी आज ही तो धृतराष्ट्र महाराज गए थे, अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं तो ये सब सिद्धि को अभी तक उन्होंने प्राप्त किया नहीं है, लेकिन क्योंकि नारद मुनि त्रिकालदर्शी हैं तो वो पहले से ही बता रहे हैं कि उनको ये करना है, इस तरह से आखिर उनको भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए वो ये प्रोसेस करेंगे। कुछ अभी कर रहे हैं जैसे स्नान करना शुरू कर दिया है और एक टाइम सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ खाते करते नहीं हैं, इस तरह से अपनी इंद्रियों को मन को बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा रहे हैं और इस तरह से उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे उनको बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता को के बोध सहित परब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव भौतिक जगत पर प्रभुत्ता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग ना करने की इच्छा से महतत्व से संपर्क करता है। अब महतत्व क्या है, ये जो 24 तत्व से बनी हुई है प्रकृति है उसमें जीव क्यों आता है, क्योंकि जीव भगवान के अंतरंग शक्ति में नहीं जाना चाहता, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता बल्कि प्रभुत्व जताना चाहता था और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता, जिसके कारण उसे महतत्व से संपर्क करना पड़ा और इस महतत्व से भौतिक जगत बुद्धि मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। अब इस भौतिक जगत में जब आ जाता है तो
इस जगत में बुद्धि मन इंद्रियों के साथ उसकी पहचान बनती है। क्या लगता है कि मैं यहाँ शरीर हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं ये हूँ, मतलब सब कुछ उसको ये याद आता है। तो इससे उसकी शुद्ध आत्मिक आध्यात्मिक पहचान प्रच्छन्न हो जाती है। वैसे तो उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन ये सारी चीजें भूल जाता है, वो क्या याद करता है, मैं शरीर हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं इस देश का सिपाही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, ये याद आ जाता है। तो योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महतत्व में लौटना होता है और इस प्रकार महतत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होता है। से क्या होता है, जब योग अभ्यास में आपको वास्तविक पहचान पुनः मिल जाती है तो यह शरीर को उसे उसी महतत्व में लौटना पड़ता है, मतलब इंद्रियों को, ये जो भौतिक शरीर है उसका परित्याग करना पड़ता है, वायु को वायु में, अग्नि को अग्नि में और पृथ्वी को पृथ्वी में, जल में, इस तरह से करना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है, परमात्मा में आत्मा को तदाकार करना होता है। दूसरे शब्दों में उसे उसकी अनुभूति होती है कि वह परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस तरह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। फिर क्या करता है, शुद्ध पहचान हो जाती है और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के पास जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो शरीर का परित्याग कर देता है और शरीर के लिए कुछ भी नहीं करता, खाता पीता भी नहीं है, योग साधना करता है और उसके बाद उसको अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, भगवान की सेवा प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होता है। विदुर तथा भगवान की कृपा से धृतराष्ट्र ने आध्यात्मिक पहचान की यह सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली। विदुर के संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों का पालन कर रहे थे तो भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता की। अभी ये जो है ना, श्री प्रभुपाद जी भी नारद जी की तरह मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस तरह उसके बाद क्या हुआ, बस ये उनका वाइंड अप करना है, इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह से, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का संपर्क उन्हें प्राप्त हुआ और विदुर के उपदेशों से जब उन्होंने पालन किया तो भगवान ने उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में सहायता की। भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी लोक में रहता है, ना भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान की पहचान करने की रुचि की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह महत्तत्व के सारे कलमश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है जिसे वह अपनी भक्ति के प्रभाव से सप्त आवरण भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं जबकि मुक्त जीव उनके परे रहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद ने अंत में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, हृदय में केवल भगवान को प्रसन्न करने की भावना होती है, तो फिर भौतिक आकाश के किसी भी लोक में नहीं और ना ही भौतिक तत्वों के बने हुए किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। फिर उस भौतिकता पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, हम आध्यात्म में स्थापित हो जाते हैं। आध्यात्म में हमारा मन, बुद्धि, हमारा शरीर सब आध्यात्म हो जाता है और भगवान की पहचान करने की रुचि की आध्यात्मिक धारा से परिपूर्ण होने के कारण उसे भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। फिर उसको भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सारा भगवान के ऊपर है। उसकी पूरी चेतना, कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है और इस तरह वह महातत्व के सारे कर्म से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महातत्व के जो 24 तत्व से बना हुआ ये भौतिक प्रकृति है उससे ऊपर हो जाता है और सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे यद गत्वाना निवर्तन्ते तद् धाम परमम, फिर आध्यात्मिक आकाश में जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको जगह मिलती है जिससे वह अपनी भक्ति प्रभाव से सप्त आवरण भेद करके प्राप्त करता है। ये जो सप्त आवरण है मतलब जो 7 लोक हैं ऊपर के, उसको पार करके वो भगवान के धाम को जाता है। और जो बद्ध जीव है जिनका अभी तक भौतिक संसार में, भौतिक व्यक्तियों में, भौतिक वस्तुओं में आकर्षण है, वो इन आवरणों के भीतर ही रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इन्हीं ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, बीच के लोकों में घूमते रहते हैं। लेकिन जबकि मुक्त जीव इनसे परे हो जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है वो इन भौतिक आवरणों को पार करके भगवत धाम को प्राप्त करता है और सदैव शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करता है। माया की सेवा से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और ये तभी संभव है जब हम भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से आकर्षण समाप्त करके भगवान में अपना आकर्षण स्थापित करें। और ये तभी संभव होता है जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। वास्तव में भक्तों, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवान की ओर आकर्षण कराने की एकमात्र विधि है। जब जीव श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करता है तभी भगवान के अंदर हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण करना तो बहुत ही बड़ी बात है। वेद व्यास जी ने कहा, सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषु तत्क्षण। जिस प्रकार अब जैसे ही आपकी इच्छा होती है मुझे श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना है, उसी समय हृदय के अंदर स्थापित हो जाते हैं भगवान। और विदुनोति सुहृत सम, हृदय के अंदर जो गंदगी है, जो कलमश है, जो भौतिक आसक्ति है, जो गुणों का प्रभाव है, वो सब समाप्त करके शुद्ध सत्व में हमें स्थापित कर देते हैं। तो कृपया हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जब तक जीवित हैं हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, ताकि हमारे हृदय से यह कलमश दूर हो सके और हम अपने हृदय में भगवान के श्री चरणों को स्थापित कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हरे कृष्ण।